समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हाय अभिषेक।
हेलो चारू।
अभिषेक, देखो सर्दियों में मन करता है कहीं घूमने का, कोई पहाड़ों में जाने का या कोई समुद्र तट पर जो भी हो बड़े बंदोबस्त करने पड़ते हैं। टिकट बुक कीजिए, होटल बुक कीजिए, पैकिंग कीजिए, छुट्टी लीजिए। अरे ना बाबा, रविवार के दिन इतना काम कौन करेगा। आप तो आराम से हो लीजिए हमारे साथ और हम रेडियो की तरंगों के जरिए आपको लिए चलेंगे देश विदेश की परिक्रमा पर। तो आज का सफर शुरू करें।
एब्सोल्युटली चारू। हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट चारू सक्सेना। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेट नाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of Kaziranga Elevated Corridor Project worth over 6,950 crore rupees at Kaliyabor in Assam, says Kaziranga is not merely a national park but the soul of Assam.
Pradhan Mantri ne 5 nayi Amrit Bharat Express rail gaadiyon ko hari jhandi dikhakar ravana kiya.
Prime Minister Modi inaugurates and lays foundation stone of various development projects worth around 830 crore rupees at Singur and Hooghly district of West Bengal.
Sukshm, Laghu aur Madhyam Udyam Mantri Jitin Ram Manjhi ne Nayi Delhi mein Pradhan Mantri Vishwakarma Hat ka shubharambh kiya.
India's power distribution registered a record profit of 2,701 crore rupees in 2024-25.
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 50 से अधिक वर्षों में पहली मानव युक्त चंद्र उड़ान के लिए नए रॉकेट को लॉन्च पैड पर पहुंचाया।
एंड इन मेंस क्रिकेट थर्ड एंड फाइनल ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड अंडरवे इन इंदौर। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about Kaziranga Elevated Corridor Project.
Abhishek, Abhijit Naskar ne kaha tha, agar hamare dil mein prakriti ke liye jagah nahi hai, to hum prakriti se apne liye jagah ki umeed kaise kar sakte hain?
Yes, you quoted Abhijit Naskar. And let me also start off with the wise words of Steve Irwin, who said, We don't own the planet Earth, we belong to it, and we must share it with our wildlife. Well, Prime Minister Narendra Modi performed Bhumi Pujan at the Kaziranga Elevated Corridor Project, four laning of the Kaliyabor Numaligarh section of NH-715, worth over 6,950 crore rupees in Kaliyabor, Assam today. The 86-kilometer-long Kaziranga Elevated Corridor Project is an environmentally conscious national highway project.
काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना में 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर शामिल होगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा। इसके अलावा इसमें 21 किलोमीटर का बाईपास खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 की मौजूदा राजमार्ग खंड का 30 किलोमीटर तक विस्तार करके इसे दो लेन से चार लेन का बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पार्क की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाना है।
Yes, and the project will pass through Nogaon in Karbi Anglong and Golaghat districts and will significantly improve connectivity to Upper Assam, particularly Dibrugarh and Tinsukia. The elevated wildlife corridor will ensure uninterrupted movement of animals, reduce human-wildlife conflict, and it will also enhance Acharu, the road safety, reduce travel time and accident rates, and support growing passenger and freight traffic.
यहाँ गाड़ियाँ ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी।
इस परियोजना के अंतर्गत जाखला बंधा और बोका खाट में बाईपास विकसित किए जाएंगे जो शहरों में भीड़भाड़ खत्म करने, शहरी आवागमन में सुधार करने और स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेंगे।
Yes, and the Prime Minister underlined the historical importance of Kaliyabor in Assam's past, present and future, noting it is a gateway to Kaziranga National Park and a hub of connectivity for Upper Assam. He recalled that it was from Kaliabod that the great warrior Lashit Borphukan strategized to drive out Mughal invaders, and under his leadership, the people of Assam, with courage, unity and determination, defeated the Mughal army. And PM Modi emphasized that this was not merely a military victory, but a declaration of Assam's pride and self-confidence.
Pradhan Mantri ne Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika ke shabdon ko yaad kiya, jinhone Kaziranga ki sundarta ka varnan gehre sneh se kiya tha. Unhone kaha ki unke shabdon mein Kaziranga ke prati prem aur Assam ke logo ka prakriti ke saath gehra judav jhalakta hai. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काजीरंगा सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि असम की आत्मा और भारत की जैव विविधता का अनमोल रत्न है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। काजीरंगा और यहाँ के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह हमारा दायित्व भी है।
Yes, and highlighting that Kaziranga is home to the one-horned rhinoceros, the Prime Minister explained the challenge faced during floods when wildlife seeks higher ground and must cross the national highway, often getting trapped.
उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने जानकारी दी कि इसी उद्देश्य से कालियाबोर्ग से नुमालीगढ़ तक 90 किलोमीटर लंबा गलियारा लगभग 7000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसमें 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव गलियारा भी शामिल है। इस गलियारे का डिजाइन वन्य जीवों, गैंडों, हाथियों और बाघों के पारंपरिक आवागमन मार्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
Yes, and PM Modi remarked that the corridor will also improve connectivity between Upper Assam and Arunachal Pradesh, and along with new rail services will open fresh opportunities for the people, and noting that when nature is protected, opportunities also arise. Prime Minister pointed out that Kaziranga has seen a steady rise in tourism in recent years through homestays, guide services, transport, handicrafts and small businesses. Local youth have found new sources of income.
प्रधानमंत्री मोदी ने असम की जनता और सरकार की एक और उपलब्धि की सराहना करते हुए याद दिलाया कि एक समय ऐसा था जब गैंडों का अवैध शिकार एक बड़ी चिंता का विषय था और 2013 और 14 में दर्जनों एक सींग वाले गैंडों को मार डाला गया था।
2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया, वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई, इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइने के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है।
The Prime Minister observed that for long it was believed that nature and progress were opposed to each other. But today India is showing the world that both economy and ecology can advance together. And he noted that the past decade, forest and tree cover has increased, with people enthusiastically participating in the Ek Ped Maa Ke Naam campaign, under which more than 260 crore trees have been planted.
2014 से बाघ और हाथी अभयारण्यों की जो संख्या में वृद्धि हुई है और संरक्षित एवं सामुदायिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ है।
2014 के बाद देश में टाइगर और एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ गई है। प्रोटेक्टेड एरिया और कम्युनिटी एरिया में भी बड़ा विस्तार हुआ।
उन्होंने बताया कि चीते जो कभी भारत में विलुप्त हो गए थे अब वापस लाए गए हैं और एक नया आकर्षण बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत आर्द्र भूमि संरक्षण पर लगातार काम कर रहा है और एशिया का सबसे बड़ा रामसर नेटवर्क बन गया है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में ये विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
Prime Minister stated that Assam too is showing the world how development can go hand in hand with heritage preservation and protection of nature.
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि असम का विकास पूरे उत्तर पूर्व की प्रगति के लिए नए द्वार खोल रहा है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिशा दे रहा है।
एंड ही चारू आल्सो एम्फसाइज्ड दैट व्हेन असम एडवांसेस द नॉर्थ ईस्ट एडवांसेस एंड विद द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल द रीजन विल रीच न्यू हाइट्स।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
वेल चारू, द वर्ल्ड बुक फेयर 2026 कंक्लूड्स टुडे एंड लेट मी टेल यू हियर दैट यस्टरडे आई हैपेंड टू विजिट द वर्ल्ड बुक फेयर एंड यू वोंट बिलीव the swarm of people that greeted me at each and every hall, browsing the books by the different publishers. And it seemed that like all the book lovers of Delhi had decided to visit the fair yesterday. Well, the curtains of the World Book Fair 2026 will come down today, like we just said, and being held at the Bharat Mandapam, New Delhi, the book fair became a meeting ground for generations, welcoming readers, young and old alike. And talking to Akashvani News, Satakshi, a PhD student from Delhi University, shares her experience.
This is my seventh time into the book fair. I just bought my book. I'm into academics, so I enjoyed coming here. And there are a lot of books, lot of authors. We get to know about the authors live. We get to take their autographs also. And right now, currently, I'm into the kids section. And here, books are very interesting, so keep visiting book fair.
And the fair features pavilions representing Indian languages, reflecting the country's vast linguistic diversity. We have a report.
In an age of digital shortcuts, the World Book Fair offers a pause where regional languages breathe through books. From folk traditions to modern thought, India's regional languages find a vibrant platform at the book fair, attracting readers into the rich cultural mosaic of the country. Talking to Akashvani News, Dr. Shams Iqbal, Director, National Council for Promotion of Urdu Language, explains how a range of engaging activities at the stall is attracting a large number of readers.
एक अट्रैक्टिव कॉर्नर सा बनाया है जिसमें हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, अदबी एक्टिविटी होती है, किताबों से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, जो भी मौजूदात हैं हर दिन दो प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इसलिए कि एक माहौल बनता है मुताले के हवाले से, लोग उसमें एक दिलचस्पी लेते हैं। तो एक तरह से आवाम को करीब लाने के लिए, रीडर को करीब लाने के लिए हमारी ये कोशिश है।
मीट अ वेंडर ऑफ तमिल बुक्स एज ही एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस ओवर द एनकरेजिंग रिस्पॉन्स एंड ग्रोइंग रीडरशिप एट हिज स्टॉल।
वी आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड this is the first time as a collective of several publications we have represented Tamil Nadu and the Tamil based books. We are very much encouraged by the readers. We could see many people who are interested in Tamil language and have bought many books.
The World Book Fair turns into a living map of India, where regional language pavilions stand like cultural landmarks, each preserving a voice, a script, and centuries of storytelling. With Sanyukta and Nargis, this is Komudi.
Abhishek, 16 January ko desh bhar mein Rashtriya Startup Divas manaya gaya. और देखो, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे हो गए हैं और ये सफर सिर्फ एक सरकारी योजना की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों सपनों और अनगिनत कल्पनाओं के साकार होने की गाथा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जशपुर जिले में शुरू हुए जशप्योर ब्रांड ने भी इस इलाके में रहने वाली हजारों आदिवासी महिलाओं के सपनों को साकार किया। ये स्टार्टअप इंडिया के साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान की सफलता की एक मिसाल है। और ब्यूरो दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता।
छत्तीसगढ़ में जशप्योर ब्रांड के तहत जशपुर जिले की आदिवासी महिलाएं प्राकृतिक वनोपज का प्रसंस्करण कर विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां तैयार करती हैं। इससे जिले में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय समुदायों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। इस स्टार्टअप के लिए पहल करने वाले समाज सेवी और युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन ने बताया,
इस ब्रांड में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि यहाँ पे स्वरोजगार हम उपलब्ध कराएं और जो यहाँ पे उत्पाद होते हैं प्राकृतिक रूप से, चाहे वो वनोपज हो चाहे वो कृषि के उत्पाद हो, उनका मूल्य संवर्धन किया जाए। खास बात ये है कि बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव के या किसी केमिकल के हमारे जितने भी उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं।
जशप्योर ब्रांड के तहत वर्तमान में करीब 3000 महिलाएं काम कर रही हैं और इनमें से लगभग 90% से अधिक कर्मचारी आदिवासी महिलाएं हैं। इस ब्रांड से जुड़ी एक महिला प्रभा साय ने बताया,
हमें महुआ से बने हुए प्रोडक्ट और बकवीट, रागी, जितने भी मिलेट्स हैं उनसे बने हुए प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि हम क्या क्या बना सकते हैं उससे, जैसे पास्ता, महुआ से बना हुआ चाय, लड्डू, इस टाइप के प्रोडक्ट हम यहाँ बनाते हैं। इस काम करने से पहले मेरा कोई आमदनी फिक्स नहीं था, लेकिन अभी हर महीना हमें 20,000 अमाउंट मिल जाता है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है।
जशप्योर ब्रांड के माध्यम से जिले की आदिवासी महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उन्हें वनोपज से विभिन्न उत्पादों के निर्माण और इनकी पैकेजिंग तथा मार्केटिंग का अनुभव भी प्राप्त हो रहा है। जशप्योर ब्रांड सिर्फ एक व्यापार नहीं है बल्कि यह आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की जीती जागती कहानी है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
Yes, and moving on, Karaikal in Puducherry is witnessing a festive atmosphere with ongoing Karaikal Carnival 2026 organized as part of the Pongal celebrations and the annual festival organized by the Karaikal District Administration in coordination with the Department of Tourism, Art and Culture and Agriculture has drawn large public participation and tourist interest through a series of cultural, sports and entertainment programs. We have more from a correspondent.
The carnival began with a colorful cultural roadshow that passed through the major roads of Karaikal town. More than 1,000 students from over 40 schools and colleges, along with folk artists and cultural troupes, took part in the procession. Another major attraction has been the 22nd Flower and Vegetable Exhibition organized by the Department of Agriculture. Spread across 4,500 square feet, the exhibition features around 45,000 flowering plants and innovative floral and vegetable installations. With this year's theme focusing on international women farmers, special exhibition halls highlight the role of women in agriculture. As part of the celebrations, a mini marathon and various sports competitions were organized, witnessing enthusiastic participation from students and youth. The carnival also features a food festival, handicrafts exhibition, and an agriculture festival offering visitors a blend of culture, cuisine, and creativity. The three-day festival will conclude in the evening with a grand film music concert featuring popular playback singers and musicians, followed by a grand dance performance presented by renowned film choreographers. With its mix of tradition, entertainment, sports and community participation, Karaikal Carnival 2026 stand out as a vibrant celebration of the region's culture and social life. For Parikrama, this is Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
Makar Sankranti is a renowned festival in Western Odisha, and this year the traditional Makar Mela is underway in the village of Bamra in the Sambalpur district, and lakhs of devotees are arriving to witness the festivities. We have more from a Sambalpur correspondent.
To seek the blessings of Lord Shiva and Lord Vishnu, lakhs of people from across Western Odisha are visiting the Makar Mela. In Bamra, Lord Madan Mohan, the moving idol of Lord Jagannath, and Dhawalsar Mahadev from Kechupani village reached the fairgrounds by chariots for a special ritual. This sacred meeting of the two deities is known as Harihar Bhet. The 7-day long festival is scheduled to conclude on January 20th. Jyoti Kumar Lat, General Secretary of the Bamra Makar Mahoshchav, spoke on the significance of the event.
हमारा ये बामरा मकर महोत्सव सन 1916 में बामरा रियासत के राजा की बेटी की शादी कलाहंडी महाराज से हुई थी, उनकी यादगार में शुरू हुआ था। और बामरा राजा ने शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय के लिए भी ये परंपरा शुरू किया था। और इसमें बामरा से 8 किलोमीटर दूर में केचुपानी गांव है, वहां से धवलेश्वर महादेव रथ पर सवार होकर आते हैं, और यहां से जगन्नाथ मंदिर प्रभु मदन मोहन वो भी रथ पर सवार होकर स्थानीय मकर मिलन मैदान में पहुंचते हैं। वहां दोनों मित्र बनते हैं और शैव और वैष्णव परंपरा का स्थापन करते हैं। और यहां पे राज्य और राज्य के बाहर से भी काफी दुकानदार आते हैं, मेला लगता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, और इसका बहुत नाम है।
हिस्टोरिकली this mela has been held since 1916 to commemorate the marriage ceremony of the princess of Bamra. It was originally established by the king of Bamra as a way to promote harmony between Saivites and Vaishnavites. For Parikrama, this is Alok Chandra Barik, Akashvani, Sambalpur.
हां जी, अब वक्त है खेल जगत की खबरों का, पर सच बात तो ये है कि आज तो सबकी नजरें टिकी हैं भारत और न्यूजीलैंड वनडे मैच पर। तो अभिषेक, क्या है मैच की ताजा अपडेट?
Yes, चारू, इन द मेंस क्रिकेट द डिसाइसिव थर्ड एंड फाइनल ओडीआई मैच ऑफ द सीरीज इज अंडरवे बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड एट द होलकर स्टेडियम इन इंदौर। एंड पुट इनटू बैट फर्स्ट, न्यूजीलैंड वर 265 फॉर 3 इन 41.5 ओवर्स व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। अर्लियर इंडिया वन द टॉस एंड ऑप्टेड टू बोल फर्स्ट। द करंट ओडीआई सीरीज इज टाइड 1-1 विद इंडिया विनिंग द फर्स्ट मैच एंड न्यूजीलैंड द सेकंड। विद रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इन फोकस, India hope to bounce back from the painful defeat of the second match. New Zealand have toured India for bilateral ODI since 1989 but have never won a series in India.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
It was on 18th January that Rabindranath Tagore visited Sabarmati Ashram in 1930. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two extremely different personalities, politically and ideologically. However, they had a great sense of mutual respect and fellowship for each other. Gandhiji was bestowed with the title of Mahatma by Rabindranath Tagore in 1915. The sense of respect that Gurudev and Mahatma shared for each other is well reflected in the words of Rabindranath Tagore.
He stopped at the thresholds of the huts of the thousands of the dispossessed, dressed like one of their own. He spoke to them in their own language. Here was living truth at last, and not quotations from books. For this reason, Mahatma, the name given to him by the people of India, is his real name. Who else has felt like him, that all Indians are his flesh and blood? In direct contact with truth, the crushed forces of the soul rise again. When love came to the door of India, that door was opened wide. At Gandhi's call, India blossomed forth to new greatness, just as once before, in earlier times, when Buddha proclaimed the truth of fellow feeling and compassion among all living creatures.
Today, we also remember Mirabeen, a British-born follower of Mahatma Gandhi, who participated in the movement for India's independence. Born in England, Mirabeen's original name was Madeline Slade. Fascinated by the principles of non-violence of Gandhiji, she took India as her home and lived here for almost 34 years before returning to England.
Mirabeen arrived in Ahmedabad on the 7th of November 1925, where she was received by Mahadev Desai, Vallabh Bhai Patel and Swami Anand. Gandhiji consented to Mirabeen's wish to stay at Sabarmati Ashram, and it was upon her arrival at the ashram that Gandhiji gave her the nickname Mirabeen.
During her initial years in India, Mirabeen learned Hindi and travelled to villages to understand the idea of India. She became one of the close confidants of Gandhiji. In 1931, Mirabeen accompanied Gandhiji to London for the second round table conference.
Mirabeen was active in spreading the spirit of non-violence. She was arrested multiple times, including during the civil disobedience, when she was detained on the charge of supplying information to Europe and America regarding conditions prevailing in India. She was again arrested during the Quit India movement when she was imprisoned in the Aga Khan Palace in Pune, along with Gandhiji and his wife Kasturba.
Following Gandhi's assassination in 1948, Mirabeen decided to stay in India.
For the next 11 years, she travelled to various Indian states, took on community projects and worked on environmental issues. On 18th January 1959, Mirabeen returned to England and a year later moved to a house near Vienna where she spent the remaining years of her life. In 1981, the Indian government conferred on her the Padma Vibhushan. We salute the noble soul.
We also remember 11 freedom fighters from Delhi who were martyred on 18th January 1858 for participating in the defense of Delhi during the First War of Indian Independence in 1857.
We salute the great martyr.
तो चलिए बात करते हैं आज कुंदन लाल सहगल के निधन पर. मशहूर अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल का निधन सिर्फ 42 साल की उम्र में आज ही के दिन 1947 को हुआ. फिल्म देवदास में उन्होंने देवदास की भूमिका निभाई. फिल्म सुपरहिट हुई और सहगल बन गए हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार. सहगल की आवाज इतनी लोकप्रिय थी कि रेडियो सिलोन कई साल तक हर सुबह 7:57 पर उनका गीत बजाता था. एक बार जब सहगल साहब दोस्तों के बीच गा रहे थे तब हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी के एक शख्स ने उनकी आवाज सुनी और सहगल साहब की किस्मत बदल गई. उनके पहले रिकॉर्ड झुलना झुलाव की 5 लाख से ज्यादा कॉपीज भी की. उन्होंने मिर्जा गालिब को आम जनता तक पहुंचाया. उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तमिल और फारसी में भी गाने गाए.
Yes, let's go ahead and listen to a song of his.
मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी. के नींदों के खजाने हैं दो उल्फत.
Listen, Sehgal's, K.L. Sehgal's unique voice quality, which was a mixture of baritone and soft tenor, was a benchmark for most of the singers who followed him. In fact, it remains the gold standard even today, shining through very early and practically primitive recording technology. He did not sing songs on which other actors would lip-sync for the camera. It was only towards the very last stages of his career, during 1945 to 1947, that he sang to make studio recordings, and these were for himself as the actor on the screen. Thus, while other singers in Hindi cinema are playback singers, he was not a playback singer, Charu.
एक बार जब सहगल साहब ने बिना पिए अपने गाने को गाया, वैसे तो वो गाके मतलब पीकर ही गाते थे, तो उन्होंने गाने के दोनों रिकॉर्डिंग सहगल साहब को सुनवाई, पीकर और बिना पिए, और पूछा कि उन्हें कौन सा पसंद आया. सहगल साहब को अपनी आवाज बिना पिए हुए ज्यादा बेहतर लगी. इसके बाद उन्होंने नौशाद से कहा, काश आप मुझे पहले मिले होते, शायद मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा रहता. आइए सुने उनका ये गीत.
जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही.
Yes, and Joseph Rudyard Kipling passed away on this day in 1936. He was an English journalist, novelist, poet and short story writer. He was born in British India, which inspired much of his work. Kipling's works of fiction include The Jungle Book duology, The Jungle Book in 1894, The Second Jungle Book 1895, Kim 1901, and Just So Stories 1902, and many short stories, including The Man Who Would Be King 1888. His poems include Mandalay 1890, Ganga Din 1890, The Gods of Copybook Headings 1919, The White Man's Burden 1899, and the very famous If in 1910. And he is seen as an innovator in the art of the short story. His children's books are classics, and one critic noted a versatile and luminous narrative gift.
धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, अग्नि से धधक धधक हिरण से सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू रुके न तू झुके न तू. ये पंक्तियां हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. उनका निधन आज ही के दिन 2003 को हुआ. हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. दो चट्टाने के लिए उन्हें हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला. मधुशाला उनका पहला प्रकाशित काव्य संग्रह माना जाता है. ये वो रचना थी जिसके लिए उन्हें अपने दौर में और आज भी सबसे ज्यादा जाना माना जाता है. उनको सरस्वती सम्मान, कमल पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला. उनके अन्य संग्रहों में प्रमुख हैं मधुबाला, मधुकलश. आइए सुने हरिवंश राय बच्चन जी की अपनी आवाज में उनकी कविता जीवन की आपाधापी में.
जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला. जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में.
Yes, and Pep Guardiola was born on this day in 1971. He is a Catalan football manager and former player from Spain, who is a manager of Premier League club Manchester City. Guardiola is one of the two managers in history to win the continental treble twice, and he holds the record for the most consecutive league games won in La Liga, Bundesliga and the Premier League, and is widely regarded as one of the greatest managers of all time. And also Charles Bruce Chatwin passed away on this day in 1989. He was an English travel writer, novelist and journalist. His first book, In Patagonia, 1977, established Chatwin as a travel writer, although he considered himself instead a storyteller interested in bringing to light unusual tales. And he won the James Tate Black Memorial Prize for his novel On the Black Hill, 1982, while his novel Uts 1988 was shortlisted for the Booker Prize.
So Abhishek, अब वक्त हो रहा है बहुत जल्दी से चलने का. देखिए आज की परिक्रमा बस यहीं तक. आपसे कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति चाहती हूँ, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय को. नमस्कार.